તારીખ 7/4/1991 શ્રી દ્રવ્યદ્રષ્ટિ પ્રકાશ બોલ નંબર 454 467 461 479 480 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું પાવાપુરીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 45
સુનતે રહેને ઓર સોચતે રહેને સે કોઈ વસ્તુ થી પ્રાપ્ત નહીં. સ્વરૂપ ગ્રહણ કરને કા યાની અપને અસ્તિત્વ કો રુચિપૂર્વક વેદન કરને કા હી અભ્યાસ શરૂ હોના ચાહીએ. સ્પષ્ટીકરણ મોક્ષ જીવ કો सामान्य भावना से तत्व विचार चलता है तो सामान्य मोक्ष को सामान्य भावना होती है पर तत्व विचार में मोक्ष को सही होता है.
बीच का कमरा में तो पानी नहीं भरा
बीच में तो
अभी खोल रहा है
तो पानी लाना है ना ज्यादा
मुमुक्षु जीव को सामान्य भावना से तत्व विचार चलता है सोचना विचारना तो बहिर्मुख भाव है इसमें वस्तु परोक्ष रहती है और ऐसे में स्वयं के महान अस्तित्व की जागृति नहीं होती. इस प्रकार से तो सोचते रहने से सुनते रहने से स्वयं के महान अस्तित्व की जागृति नहीं आती किंतु स्वरूप की अनन्य रुचि से ज्ञान मात्र के वेदन से प्रत्यक्ष तौर से अस्तित्व का ग्रहण का प्रयास होना चाहिए. ऐसे प्रयास से अंतर्मुखता व्यक्त होती है. ये जो 456 है उसका स्पष्टीकरण बिल्कुल स्पष्ट है. ये समस्या है आजकल बहुत पढ़ा बहुत सुना लेकिन कुछ नहीं होता है. क्या करें अब कैसे करें ये बात तो स्पष्ट लिखी गई है कि ऐसे तो काम होने वाला है ही नहीं. ये तो वही मुख करें मन है ग्रहण करने का प्रयास होना चाहिए. संक्षेप में वो बात लिया है जब सोचने में वस्तु परोक्ष रहती है तो ग्रहण करने में वस्तु प्रत्यक्ष होती है या प्रत्यक्षता से वस्तु का ग्रहण होता है जैसे भी कहो बात तो एक ही.
रुचि पूर्वक वेदन करने का या अहम भाव से हूं पड़ा रूप वेदन कर रहा हूं एक क्या
पर वहां अस्तित्व है भी वो तो अध्यास से राग में हम पढ़े का वेदन करता है जी. वास्तव में मध्यस्थ होकर स्थिर चित्त होकर देखे न तो अपना अस्तित्व है वो ज्ञान में ही मालूम पड़ेगा. तो समय साल के 70-71 बता है उसमें वो बात लिया है कि ज्ञान क्रिया जैसे होती मालूम पड़ती है विचार में आती है नहीं मालूम पड़ती है ये सिद्ध लिया है वैसे क्रोधादि क्रिया होती हुई मालूम नहीं पड़ती और जैसे क्रोधादि क्रिया होती हुई मालूम पड़ती है वैसे ज्ञान क्रिया होती हुई मालूम नहीं पड़ती है. इसका मतलब क्या है कि अस्तित्व दो में से एक में जीव कर सकता है और है एक जगह, ज्ञान में होने पर भी राग में करता है तो ज्ञान में अस्तित्व मालूम नहीं पड़ेगा, होने पर भी नहीं मालूम पड़ेगा। और ज्ञान में अस्तित्व देखा मालूम पड़ा तो राग होते हुए भी, राग की उपस्थिति होते हुए भी राग में अस्तित्व मालूम नहीं पड़ेगा। ये एक परिस्थिति है कि जिसका उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसी एक परिस्थिति है कि यदि जीव राग में अस्तित्व अनुभव करता है तो अनादि से कर रहा है, उसको ज्ञान में अपना अस्तित्व मालूम नहीं पड़ेगा होते हुए भी। और ध्यान से अगर देखा राग की रुचि छूटी, अपना हित की रुचि हुई, और ज्ञान में कुछ गौर से देखा तो अपना अस्तित्व मालूम पड़ेगा। और है भी, है इसलिए मालूम पड़ेगा, नहीं हो तो मालूम पड़ना कठिन होता है, लेकिन है इसलिए तो मालूम पड़ेगा। अगर ज्ञान में अस्तित्व मालूम पड़ा तो राग में अस्तित्व मालूम नहीं पड़ेगा, ये वस्तु स्थिति है। ये बात करता कर्माधिकार के प्रारंभ में बहुत अच्छी लिया है हमने चंद्राचार्य। अब सामान्य विचार से भी इतना तो ख्याल में ध्यान में आना चाहिए कि ज्ञान है, राग है, शरीर आदि पर वस्तु है। मेरा अनुभव ये बोलता है कि मैं शरीर रूप हूं, मैं राग रूप हूं। ये तो अनुभव को तलाश करें तो पता चल जाएगा मुझे क्या अनुभव हो रहा है। अब ज्ञानी कहते हैं कि तेरी भूल हो रही है, तो ज्ञान स्वरूप है और तेरा अस्तित्व नहीं है, जरा गौर से देख, ये भूल मत कर दो, इस भूल से तुझे दुख होता है, ये भूल मिटेगी, सुखी हो जाएगा। बात तो कोई लंबी चौड़ी इससे ज्यादा नहीं है। तो बहुत स्पष्ट है, जब तक तो सोचते रहने से, सुनते रहने से वस्तु परोक्ष रह जाती है तो फिर सोच लिया, विचार कर लिया, समझने का जहाँ तक इरादा था, समझने का जहाँ तक स्टेज था, जो बात समझना है तो भी प्रत्यक्ष करने का प्रयास होना चाहिए, जागृति से ग्रहण करने का प्रयास होना चाहिए। प्रयास में लग जाए और प्रयास सफल नहीं हो ऐसा इधर बनता नहीं, सांसारिक किसी भी कार्य में प्रयास निष्फल हो सकता है। यहाँ एक मार्ग के इतनी सुंदरता है कि जो प्रयास करता है उसकी सफलता मिलती ही है। एक केस में ऐसा नहीं है कि जिसको जिसने प्रयास किया वो सफल नहीं हुआ, वास्तव में प्रयास पीछे लग कर भी प्रयास होना चाहिए।
प्रयास का इतना ही मर्यादा है ज्ञान और राग का, मैं शरीर रूप हूँ कि ज्ञान रूप हूँ, इसी को तपासना ही प्रयास है।
तपास करके अपना जो अनुभव है उसको ठीक करना है। जैसे अनुभव प्रकाश में अपनी शैली से दीप सिंह जी ने कहा कि उपयोग को यथास्थान रूप करना। यथास्थान मतलब क्या, कि जहाँ अपना अस्तित्व है वहाँ अस्तित्व का अनुभव करना, जहाँ अपना अस्तित्व नहीं है वहाँ उपयोग अपना अस्तित्व का अनुभव करता है तो उसको दुख होता है, इससे दुख होता है। तो बहुत सरल शैली में बात लिखी है, जहां जहां ज्ञान वहां वहां में ऐसा भाव सम्यक्त है, जहां जहां ज्ञान त्या त्या होंगे वो भाव सम्यक्त है। उपाय अपना उपयोग ही है ऐसा करके भी लिखा है, और कोई उपाय नहीं है ये भी मान लीजिए। एक समय का अनंत आनंद का वेदन आवे वह भी मैं त्रिकाली तत्व नहीं हूं, क्योंकि वेदन का मेरे में त्रिकाली में अभाव है। मैं एक समय के वेदन में आ जाऊं तो मेरा नाश हो जाए। स्पष्टीकरण, मैं एक समय की पूर्ण पर्याय जितना ही नहीं, लेकिन पूर्ण पर्याय से भी अधिक हूं ऐसा कहने का अभिप्राय है। अनंत आनंद का वेदन तो पूर्ण पर्याय में होता है, इसलिए एक समय की पूर्ण पर्याय जितना मैं नहीं कोई अभिप्राय है। 761 है क्या विषय? रक्षण मृत्यु के लिए तो तैयार ही रहना, कभी भी हो और कैसे भी वेदना हो, सातवें नरक जैसे भी वेदना हो, फिर भी क्या, मानसिक तैयारी कितनी है। मृत्यु तथा मृत्यु की वेदना दोनों में, दोनों से मैं अधिक हूँ, अधिक हूँ या भिन्न हूँ, ऐसा मैं मेरे स्वसंवेदन से अनुभव करता हूँ। क्यों? कि देह त्याग वो मेरी अवस्था नहीं, जब देह ग्रहण हुआ है वो मेरी अवस्था नहीं है अभी भी वर्तमान में भी, तो फिर देह त्याग भी कभी होगा मेरी अवस्था नहीं है। तो उसी वक्त जो वेदना होती है वो भी देह के पर्याय है, मेरी नहीं, इससे मैं भिन्न हूँ।
अधिक शब्द का प्रयोग भिन्न के रूप में,
भिन्न के रूप में, अधिक का मतलब ऐसा है जैसे समय साल में कथा कि चिति इंद्रियो ज्ञान स्वभाव अधिक जाने आत्मने। तो ये मृत्यु और वेदना में जीव हार जाता है, अधिक कहने में उस पर विजय लेना है। भिन्न हो और अधिक हो मैंने बलवान हूं, मैं मृत्यु और मृत्यु की वेदना से मैं कोई कमजोर नहीं हूं, इससे मैं अधिक हूं, मैं अधिक बलवान हूं, ऐसा अभिप्राय है। भिन्न हूं और अधिक हूं,
इसमें ज्यादा फोर्स ज्यादा आता है।
अपना स्वसंवेदन से मेरी अधिकाई भासती है, अधिकाई मालूम पड़ती है, वेदना फिरना में कोई आर्जन में ऐसी बात नहीं है। ऐसे जहाँ तक परिणाम का लक्ष्य रहता है वहां तक मैं पुरुषार्थ करूं, अंतर में बोलूं, ऐसे कर्तृत्व का बोझा रहा ही करता है। इसलिए तो कहता हूं कि भाई तू परिणाम मात्र का लक्ष्य छोड़, विकल्प निर्विकल्प सभी परिणाम का लक्ष्य छोड़, अनुभव हुआ नहीं हुआ वो न देख या मत देख। मुमुक्षु जीव को तत्व विचार चलता है, उसमें जब तक उक्त प्रकार के परिणाम आते हैं तब तक उसका वैसे परिणामों पर वजन जाता है या जोर जाता है। तो जिस मात्रा में पुरुषार्थ सामान्य स्वरूप के प्रति होना चाहिए वो उत्पन्न नहीं हो पाता है। अतः तत्व विचारक मुमुक्षु को तद विषय अत्यंत सावधानी आवश्यक है, एक परिणाम पर हमारा वजन नहीं जाना चाहिए। सभी जगह यही बात है कि सामान्य स्वरूप को मैंने मूल स्वरूप को ध्रुव स्वरूप को मुख्य कर परिणाम मात्र की भावना कर, वहां तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो शायद जानने में आ ही जाएगा, इस पर इतना ध्यान देना जरूर नहीं है, लक्ष्य देना जरूर नहीं है कि इस लक्ष्य देने से सामान्य पर लक्ष्य नहीं रहे। सामान्य पर लक्ष्य रहने से सहज ही क्या हुआ नहीं हुआ, होता है क्या क्या नहीं होता है सब जानने में आता ही रहेगा, नहीं जानने में आएगा ऐसा बात नहीं है, लेकिन लक्ष्य पूर्वक से नहीं जानना है, परिणाम पर के लक्ष्य पूर्वक से नहीं जानना है, त्रिकाली के लक्ष्य पूर्वक से ये सेहत जानने में आ ही जाएगा, कोई इस पर लक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है।
तो अस्तित्व ग्रहण करने के बाद पर जो है सही रूप से जानने में आता है, अवलोकन के कारण ऐसा लगता है कि उधर से नजर उठाई तो उधर उपयोग पर हटा फिर क्या हो रहा है वहां ख्याल नहीं जाता। सब विकल्प चलते हैं जिस विषय के भी वहां से उपयोग हटा तो फिर वहां क्या होता है ये पता नहीं चलता, उपयोग की ओर चलता है। अस्तित्व जब ग्रहण हो जाता है फिर सहज रूप से और मेरे क्या होता है जान लेना
अवस्था में सविकल्प आ रही निर्विकल्प आ रही उसका लक्ष्य रहने से मूल स्वरूप का लक्ष्य रह नहीं सकेगा, लक्ष्य को जगह नहीं रहता। लक्ष्य स्वरूप का रहा तो जिसमें लक्ष्य रहा वो तो अवस्था है, लक्ष्य स्वरूप का रहा किसमें अवस्था में रहा तो अवस्था में तो क्या हुआ वो तो नहीं पता चलेगा, वो बात कहाँ से हुई, भले उस पर लक्ष्य न हो फिर भी उसका क्या हुआ नहीं हुआ तो ज्ञान में आता ही रहेगा। वो तो मतलब कार्य तो अवस्था में वो तो होता ही जानने का, लक्ष्य कहाँ है वो महत्व है। तो बार बार वहां आना पड़ता है, तो जहां तक पहचान नहीं होगी लक्ष्य नहीं आएगा, जहां तक अपनी चीज लक्ष्य में नहीं आई तो व्यवस्था ठीक बैठने वाली नहीं है। कुछ भी पढ़े कुछ भी सोचे तो समस्त ही लक्ष्य में नहीं है, परिणाम का लक्ष्य अनादि से छूटेगा कैसे। जो लक्ष्य फेरना है वो तो फिर वो तो वहां का वहां रह गया, तो उसमें तो कोई फेरफार हुआ नहीं, फिर कुछ भी कर रहे कोई भी काम करे। चार सौ अस्सी में भी यही बात है, मिथ्यात्व हो या संगत हो ये देखो ही मत। मैं तो ध्रुव तत्व हूँ, यहाँ आते ही मिथ्यात्व पर्याय भी निश्चय से नियम से चली जाएगी, दृष्टि के निर्णय में पुनः शुद्धि करेगी। ये नोट कर देना पत्रों में
आया
यहाँ आते ही मिथ्यात्व पर्याय भी निश्चय से नियम से चली जाएगी, दृष्टि के निर्णय में पूर्ण शुद्धि भरी हुई है, दृष्टि के विषयभूत स्वरूप में पूर्ण शुद्धि भरी है, तो उसके निर्णय में भी अर्थात निर्णय के गर्भ में भी पूर्ण शुद्धि का सत्व है, पूर्ण शुद्धि प्रकट होगी ही होगी। स्वस्वरूप स्वरूप निर्णय के काल में नियम से स्वरूप अस्तित्व का ग्रहण होता है, और स्वभाव के संस्कार ऐसे पड़ते हैं कि जिसके फल स्वरूप सिद्धपद प्रकट होगा ही। ऐसे दृष्टि के विषयभूत स्वस्वरूप का निर्णय होते ही सभी अवस्थाओं के प्रति उपेक्षा सहजी हो जाया करती है। यहाँ आए बिना परिणाम के जो चाल है, परिणाम की जो योग्यता है वो ठीक नहीं होती। तो सर्वोत्कृष्ट महान जो अपना पद है स्वरूप है उसकी मानता से उसका लक्ष्य वहां रहेगा, मानता होने से लक्ष्य रहता है, फालतू तो नहीं रहता। बस लक्ष्य अपने स्वस्थान में आया वही एक अवस्था है कि जिसमें लक्ष्य आया, बस बाकी के जो सब फैक्टर हैं परिणाम के ऑटोमेटिक सेट राइट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अपने यथायोग्य प्रकार से हो जाएगा, कोई गड़बड़ी होने वाली नहीं। फिर मिथ्यात्व रहा सम्यक तो हुआ, कुछ देखने का सवाल नहीं, अनुभव हुआ नहीं हुआ कुछ देखने का परवाह ही नहीं रहती है, क्योंकि लक्ष्य में एक ऐसा भाव है कि मैं यह हूँ। तो जब मैं स्वरूप से परिपूर्ण हूँ फिर सम्यक्त्व करना या मोक्ष करना इस स्वरूप में कहाँ जगह है, ये तो अनादि अनंत जैसा है वैसा पूर्ण है, उसमें कोई अवकाश नहीं है न करने का न कोई कुछ करवाने का, बस मैं ये हूँ बात खत्म। मैंने कोई प्रकार की अवस्था की परवाह फिर नहीं रही है, और अवस्था की परवाह नहीं रही फिर भी सभी अवस्था क्रमशः ठीक हो करके पुनः शुद्ध हो जाएगी सिद्ध तक। बिना आकुलता कार्य का प्रारंभ होगा, बिना आकुलता कार्य सुधरने लग जाएगा, बिना आकुलता कार्य पूर्ण हो जाएगा, और ये सबका ज्ञान रहता है, होता जाएगा। लक्ष्य देने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, लक्ष्य फिरने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, इतनी ऑटोमेटिक परिस्थिति। ये वस्तु का विज्ञान है।
सहजता का सही जो वाच है ये तो समझना,
बस फिर समझ में आएगा सहजता क्या चीज है और सहजता कैसे होती है। सहजता भी करने की तो चीज नहीं रही, करने की चीज रही तो सहजता से मेल नहीं बैठता है।
वस्तु तो अपने सवाल से निकाल प्रत्यक्ष है, उसको हमें देखने का कोशिश करना है।
और वो भी उसका सैंपल बाहर है। वस्तु जो त्रिकाल प्रत्यक्ष है उसका सैंपल ज्ञान सामान्य में है।
ज्ञान सामान्य को असर करना है,
ज्ञान सामान्य जो है वो तिरुभूत है, अविरुद्ध सिर्फ करने का है। ज्ञान सामान्य है वो तो है प्रगट, लेकिन ध्यान में क्यों नहीं आता कि तिरुभूत है। अब तिरुभूत क्यों है कि ज्ञान विशेष में आविर्भूत बना है। एक दर्शन ये विषय आगरा में बहुत चला है इस वक्त, ज्ञान सामान्य और ज्ञान विषय प्रश्न भी बहुत आए इस पर, क्योंकि पंडित लोग सब आए थे अलग अलग जगह से, और ये बात थोड़ी नई सी लगती है। ये वीरेंद्र ने बाद में प्रश्न किया, समय पूरा होने के बाद वो मिले नीचे मित्राजन में कि ज्ञान सामान्य आप पर्याय लेते हो, तो ज्ञान सामान्य त्रिकाल ध्रुव ले लेते तो क्या, ये बात है पूछा। तो मैंने तो संक्षेप में बोला कि ये चर्चा गुरुदेव से चली थी, क्योंकि ज्ञान सामान्य में त्रिकाली स्वभाव लेने की नहीं लेना,
मार्ग बंद हो जाता है। इसको त्रिकाली है, मार्ग बंद हो जाता है,
कैसे पकड़ेंगे, चैनल तो खत्म हो गया। प्रयास में उस वक्त मेरा विचार चलते चलते बात पूछ ली, मैंने जवाब दे दिया उतना सा, क्योंकि गुरुदेव को तो स्वीकारते हैं कि जब उन्होंने समय सार पर जो बात खोली है आज तक, जो जितने भी ज्ञानी हुए या पंडित हुए या विद्वान हुए इतनी बात तो किसी ने नहीं खोली है, वो तो अभूतपूर्व है, उसमें तो कोई दो मत नहीं है, दो राय नहीं हो सकती। तो गुरुदेव ने समय सार को जो खोला है वो तो अभूतपूर्व है, उनके मुकाबले में विद्वान तो आ ही नहीं सकते, दूसरे ज्ञानी ने उतना नहीं खोला है, उतना समय सार को खोला है। इसका यही कारण है कि तो उनको समय सार निमित्त हुआ और वो समय सार में बहुत गहरी उनके उपयोग चल गया है, खुद का स्वयं का उपयोग इस विषय में बहुत चला है। यहाँ से उन्होंने भीतर में जाने का हुआ है, इसलिए
शुद्ध की गति के अलावा
हाँ सत्य सहायता तो आती है। तो नीचे जो उसी बात का विस्तार अमृतचंद्र आचार्य करते हैं, उसमें वो साफ लिखते हैं कि जो ज्ञान विशेष के आविर्भूत से अनुभव में आ रहा है वही ज्ञान, ऐसा लिखा है, वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है, त्रिकाली का नहीं लिया। जो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से, नमक का दृष्टांत दिया कि जो नमक अलग अलग जो नमकीन है पदार्थ उसमें भिन्न भिन्न रूप से स्वाद में आता है, वास्तव में नमक में खारापन है वही सामान्य है, चाहे वो सब्जी में डालो, चाहे दाल में डालो, चाहे नमकीन कुछ भी आइटम हो उसमें डालो, तरह तरह के आइटम होती है, पर उसमें बिना नमकीन सब फीका लगता है, नमक होता है तो उसमें स्वाद आता है, पर अलग अलग स्वाद लेते हैं लोग, तो नमक का स्वाद अलग अलग नहीं है, नमक तो एक स्वाद वाला है। वैसे ज्ञान विशेष रूप से जो विशेष न्याकार भाव से जो आविर्भूत होते हैं, ज्ञान का वैसा स्वरूप नहीं है, ज्ञान सामान्य है, ज्ञान का स्वरूप है, एक रूप स्वरूप है, तो उसमें पर्याय इसलिए है कि वो तो आचार्य के कथन से नाम मिलता है कि जो ज्ञान विशेष रूप से अनुभव में आ रहा है, विशेष के आविर्भाव, वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है, तब ज्ञान प्रकट, ज्ञान का प्रकट अनुभव होता है, जैसा उनका स्वाद है वैसा ही अनुभव होता है, ज्ञान का आस्वाद होता है। वो बात तो साफ होगी कि अवस्था की बात है, ये बात तो नीचे से ही साफ होगी। प्रश्न तो विषय को नहीं समझते ऐसे भी बहुत है कि एक समय में दो पर्याय कैसे हो सकती है ज्ञान के, सामान्य रूप और विशेष रूप, तो बार बार ये बात को करना पड़े कि दो पर्याय है नहीं, एक ही पर्याय का दो रूप है, एक अंतरण है एक बहिर्गमन है। ये 454 वाला देखो, आपकी कल की चर्चा का अच्छा स्पष्टीकरण है। 454 लक्ष्य करने का विषय पर्याय है ही नहीं, और वेदन करने का विषय स्वभाव है ही नहीं, एक अवलंबन का विषय है एक वेदन का विषय है, जो वेदन का है वो अवलंबन का नहीं, जो अवलंबन का है वो वेदन का नहीं। मैंने अपना अपना कार्य का साफ डिवीजन है, तो फिर एक में दूसरे को क्यों निर्भर करे रख करके।
अपना कार्य तो लक्ष्य का अवलंबन लेने का है, वेदन इसका बाई प्रोडक्ट
सहज रूप से हो जाएगा। पर वेदन बाई प्रोडक्ट क्या, वेदन तो है ही, ज्ञान अपना ज्ञान वेदन का त्याग कर ही नहीं सकता, ये इनका स्वरूप है, स्वरूप का त्याग हो जाएगा, लेकिन वो तिरोभूत है, वो आविर्भूत हो जाएगा, है नहीं सो बात नहीं, है नहीं और करना है सो बात नहीं है, तो तिरोभूत है, यही कारण से उसमें आविर्भूत नहीं कर होने से वो प्रकट रूप से अनुभव में आता है, और तिरोभूत होने से प्रकट रूप में अनुभव में नहीं आता, तो उनको उनकी प्रकटता में अवरोध कौन है, ऑब्स्टेकल्स कौन है। कि अपना जो अध्यास कि मैं राग को वेदता हूँ, मैं ज्ञान के विषयभूत पदार्थ को वेदता हूँ, ये अवरोध है। तो लक्ष्य बदला, ये अवरोध खत्म हुआ, वेदन तो है ही, वो आविर्भूत हो जाएगा, करने का धरने का कोई बात नहीं रहा,
बात लक्ष्य बदलने की बात है,
लक्ष्य बदलने की बात अवश्य है। अनादि का जो पर्याय पर लक्ष्य है वो अपने स्वरूप की पहचान होने से लक्ष्य सहज बदल जाता है, जैसे कोई मिनिस्टर आ रहा है, अकेला तो आएगा नहीं, इनके साथ 10-20 आदमी होगा, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम नहीं जानते मिनिस्टर कौन है, इसमें हमने अनुमान कर लिया कि ये मिनिस्टर होगा, कभी देखा नहीं है। हमारा ऐसा हुआ था, हमारा जो नियोपन पालिकम वाला फैक्ट्री था उस पर एक स्टेट ऑफ सौराष्ट्र हुआ ना, तो उसका इंडस्ट्री मिनिस्टर आ गया देखने को लिए, कभी कभी इंडस्ट्री को देखता है, तो मतलब हम तो रिसर्च भी करते थे, इसलिए जो जो लोग लाए उनको पता है कि देखो यहाँ कुछ रिसर्च चलता है, ये फैक्ट्री छोटा है लेकिन रिसर्च चलता है, वो फ्यूल एडिटिव का रिसर्च करते थे। तो वो हमने तो कभी देखा नहीं था कि कौन है, मनोवाइक शाह करके था ऐसे को। और इसके आगे जो एक दो साथ में जो एक दो आदमी थे वो थोड़ा पर्सनालिटी वाला था, हमने सोचा कि ये होगा, तो मैं इसके सामने देखकर मुझे पधारो, तो उसने ऐसा ही कर लिया, ये है। अब जब पता चला कि ये मिनिस्टर है, ये इसका असिस्टेंट हो या कुछ भी हो साथ में आने वाला है, फिर लक्ष्य किसका रहेगा? तो जो भी बातें चलेगी इसमें इसके लक्ष्य से ही सब बात चलेगी ना। तो अनादि का जो पर्याय का लक्ष्य है, जब पहचान हुई तो पहचान में आने वाला तत्व इतना महान है, इतना महान है कि इससे आगे किसी की महानता है ही नहीं, पर्याय की या किसी की भी नहीं है। दूसरे प्रकट परमात्मा की नहीं है तो दूसरे की तो क्या बात करें। तो जब ये पहचान में आया, बस लक्ष्य होना ऑटोमेटिक है, यहाँ से लक्ष्य बंद होना, इसका लक्ष्य होना सहज रूप से स्वाभाविक है, बस एक दफे लक्ष्य बदला फिर आगे की बात सब ऑटोमेटिक है। सम्यक दर्शन से लेकर के सिद्ध पद ऑटोमेटिक है।
ज्ञान अपने प्रदेश से उठता है तो उसमें तो होते इंद्रिय स्थिति में
जब उठता है, तो पहले कहा कुछ माध्यम से उनकी जरूरत नहीं,
तो वही वेदन है,
है?
वही सामान्य ज्ञान है, इसी को आप सामान्य ज्ञान कहते हैं,
है? बस
आगे जब आता है तो वो किसी का विषय करता है तो वहाँ इंद्रिय का
फिर वही विशेष रूप धारण करता है, वही ज्ञान विशेष रूप धारण कर लेता है, विशेष रूप धारण कर लेता है फिर भी सामान्य का अभाव नहीं होता।
सामान्य से तो उठा ही है, तो वो अभाव कैसे हुआ?
सामान्य तो चालू रहता है,
विशेष के साथ सामान्य तो जुड़ा हुआ है, विशेष के साथ सामान्य जुड़ा, सामान्य
नहीं, एक ही है,
एक ही
है। इसके एक बहिरंग है, एक अंतरंग है, एक ही है। जैसे स्फटिक है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शक, उसमें कोई कलर आया तो पदार्थ नजदीक आने से, तो जहाँ वो कलर है वहीं बिना कलर, वहीं भी वो भी वही बिना कलर, वहाँ उसकी अवस्था है, लेकिन कलर की मुख्यता में उसकी ट्रांसपेरेंसी हमारे ध्यान में नहीं रहते। अगर ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गए तो कलर आएगा ही नहीं, कलर आता है वही उसकी ट्रांसपेरेंसी को प्रकाशित करता है, जाहिर करता है, प्रसिद्ध करता है। अगर उसकी कोई पारदर्शकता होती नहीं तो दूसरी चीज का उसका कलर उसमें कैसे भाषित होता?
वो ट्रांसपेरेंसी अगर द्रव्य रूप होती, ट्रांसपेरेंसी अगर द्रव्य रूप होती तो उसमें कोई दूसरा रूप नहीं होता उसका, कोई भी एक जो चीज जो रंग पकड़ लेती वो उसी रूप में रह जाती
ये अवस्था है,
अवस्था है, इससे सिद्ध
होता है। अगर वो द्रव्य होता तो जो कलर है वो जा नहीं सकता, अवस्था तो पलटती हुई चीज है। अच्छा, अब एक स्फटिक पत्थर कलर वाला जब दिखता है उस वक्त भी हमारी नजर हम उसकी मूल स्थिति पर ले जाए तो स्फटिक कैसा है उसका हमको ज्ञान हो जाएगा, भले कलर वाला उसका कलर पना तो हमको स्फटिक का निष्कलर पना को ध्यान ज्ञान करने में सहायक होगा, बाधक नहीं होगा,
साधक हो जाएगा।
एक पत्थर में जाएं आती है, दूसरा पत्थर में नहीं आती है। तो जिसमें जाएं आती है ये सब ये इसको प्रसिद्ध करती है कि स्फटिक है, जिसमें नहीं आया वो स्फटिक नहीं है। दोनों के बीच में एक फूल रख दो, दो पत्थर के बीच में, एक में जाएं आएगी, दूसरा में नहीं आएगी, तो जाएं आया वो तो स्फटिक, स्फटिक की स्फटिकता को प्रसिद्ध करती है, मैंने विशेष सामान्य को प्रसिद्ध करता है। ज्ञान में भी ज्ञान विशेष सामान्य को प्रसिद्ध करता है। ज्ञान सामान्य में वेदन है, वेदन से पूरी प्रत्यक्षता पहचानी जाती है, ग्रहण हो जाती है। बस प्रत्यक्षता ग्रहण हो गई कि उसकी असर दूसरी है, परोक्ष की असर नहीं आती है। सोचते रहने से, विचार करते रहने से जागृति नहीं होती। विचार से तो अपन ये बोलता है कि सोचते रहने से तो जागृति नहीं होती, ग्रहण करने से ही जागृति होती है। सोचने में तो वस्तु परोक्ष रह जाती है, इसलिए जागृति क्यों नहीं आती। हम वस्तु का विचार करते हैं, उनको जागृति क्यों नहीं आती कि हम आत्मा है, ऐसे जागृति क्यों नहीं आती। आत्मा का विचार करते हैं और आत्म जागृति क्यों नहीं आती, कि वस्तु परोक्ष है विचार के काल में। प्रत्यक्षता में तो वस्तु जागृति आई जाएगी, क्योंकि वस्तु परोक्ष है तो जागृति आई जाएगी, लानी नहीं पड़ेगी। सोचने में तो वस्तु परोक्ष रह जाती है, और ग्रहण करने में वस्तु प्रत्यक्ष होती है। सुनते रहने से और सोते रहने से तो वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। क्या लिखा, अब याद आते हैं श्रीमद् जी के वचन, कर विचार तो वहां सुगानी जी कहते हैं कि विचार करने से प्राप्ति नहीं होती, वो कहते हैं कि होती है। वो सुविचारने वाला स्टेज दिया है कि जिस वो आगे जा करके विचार की कक्षा को उल्लंघन करके आगे जाएगा और इससे आगे जा करके प्रत्यक्ष ग्रहण करेगा। चंद्र उन्होंने इतनी सूक्ष्म बातें नहीं ली, इसका यही कारण है कि लोग इस वक्त आत्मा के विचार में भी नहीं रहते थे। सामायिक करे, प्रतिक्रमण करे, पूजा करे, भक्ति करे, आत्मा विचार नहीं करते थे कि आत्मा कैसा है कैसा नहीं है। फिर आगे की बात क्या कहें, कैसे कहे, और कहे तो क्या समझेंगे। ये बात तो 20 साल पहले से तो प्रसिद्ध है। ये प्रत्यक्ष परोक्ष की चर्चा हमारे यहाँ है, हम तो इतना विचार करते हैं इस विषय का, कितना विचार चलता है। बहुत से विद्वान हो गए, विचार करते करते बहुत से पढ़ते पढ़ते पंडित हो गए, समझे समझाने लगे, लेकिन प्रत्यक्षता परोक्षता की चर्चा ही नहीं करते कि विचार में क्या अंतर है, जागृति में प्रत्यक्षता में क्या अंतर है। एक से काम नहीं होने वाला है, दूसरे से ही काम होने वाला है, इसकी तो चर्चा नहीं चलती।
सोचना बंद कर देना चाहिए, सोचने जो है विचार करना बंद हो जाना चाहिए।
ऑटोमेटिक हो ही पाएगा,
वस्तु की प्राप्ति होने के बाद होगा, पहले कर देना चाहिए।
ऐसा है, आपको आपको मैं एक बार प्रश्न पूछता हूँ, जब ये प्रश्न है सामने, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि सिर दर्द होता है तो नींद नहीं आती है, और नींद नहीं आती है तो सिर दर्द मिटता नहीं है। अब पहले सिर दर्द मिटे तो नींद आवे, या पहले नींद आवे तो सिर दर्द मिटे, क्या बताइए आप।
सिर दर्द मिटे पहले,
दोनों साथ होगा। दर्द के कारण से नींद नहीं आती, पर नींद नहीं आती है तो दर्द मिटने वाला नहीं है। डॉक्टर कहेगा भाई नींद आना तुझे जरूरी है, अब आप डॉक्टर को प्रश्न करते रहो कैसे निबेड़ आएगा कि दोनों साथ होगा। वैसे विचार बंद होना और प्रत्यक्ष ग्रहण होना एक ही बात है, प्रत्यक्ष का ग्रहण होना, विचार बंद हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि विचार की वहां आवश्यकता नहीं है। आप नहीं है तो आपके बारे में मैं विचार करता हूँ, जब आप सामने हैं तो विचार करने की मुझे क्या जरूरत है। तो प्रत्यक्ष से वस्तु को प्रत्यक्ष कर लो, बस बात खत्म। जहाँ तक स्वयं का स्वरूप परोक्ष है, ऐसा लगता है कि हमारा स्वरूप कहीं अंधेरे में पड़ा है, खोजते खोजते मिल जाए तो अच्छा है। कहीं ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, ऐसा कोई उसको विचार आता है, लेकिन कहीं मुंडी मुंडी गुफा में कहीं अंधेरे में पड़ा है। तो प्रत्यक्ष से वस्तु के अनंत प्रत्यक्षता इतनी भाषित होती है, फिर खोजने का सवाल नहीं है। अनंत प्रत्यक्ष वस्तु वो छिपी कैसे रह सकती है, फिर तो ये सवाल है। जब सूर्य तेज का पुंज है, अगर उसे हम छिपाना चाहे तो सूर्य है वो तेज का पुंज है, इतना इतना तेज का पुंज है, इतना तेज का पुंज है कि उसके सामने देख नजर नहीं उठा कर सकते, उतना तेज पुंज है, तो उसको कहाँ छिपाएंगे। ऐसे स्वरूप अनंत प्रत्यक्षता का तेज पुंज है, वो छिपी कैसे रह सकती है, तो उसकी छिपी रख ही नहीं सकेंगे, इसलिए लक्ष्य नहीं बदलता। वहां पहचान हो गई तो पहचान नहीं है, वहां तक सब तकलीफ, फिर भी ज्ञानों ने रास्ता साफ किया है। नहीं पहचान है तो पहचान करने की भी पद्धति है, और कार का प्रारंभ होने की भी पद्धति है। प्रारंभ ठीक कर लिया, पहचान तक पहुंच जाओगे। प्रारंभ नहीं किया, कुछ भी करो कुछ होने वाला नहीं। तो जिसने ये सूत्र दिया कि पूर्णता से लक्ष्य से शुरुआत मैंने प्रारंभ किया है, बस एक दफे प्रारंभ होना आप बात तो ऑटोमेटिक पूरी की पूरी।
पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत ये तो एक ध्येय रूप है, इसको एक डिसीजन करने के इसमें है, काम करने में तो ये ध्येय एक बार बन गया, इसको तो बार बार याद करना नहीं पड़ता है।
जरूर भी नहीं याद करने की जरूरत भी नहीं, काम तो परिणाम में चालू ही है। अब जो काम परिणाम में चालू है वो भी कोई ध्येय आश्रित चालू है, बिना ध्येय वाला कोई जीव नहीं है। संसार का ध्येय होता है, स्मरण नहीं करना पड़ता है, संसार का ध्येय को भी स्मरण नहीं करना पड़ता है। वैसे अगर ध्येय बदल गया तो उस ध्येय को भी स्मरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परिणाम तो काम कर ही रहा है, काम करना है वो बात कहाँ है, परिणाम तो कार्य रूपी है और स्वयं काम कर रहा है, वो ध्येय का अनुसरण करते रहेगा। जैसे उसी ध्येय को अनुसरण करता रहा है ऑटोमेटिक, वैसे उसी ध्येय को अनुसरण करता रहेगा। जब हमने ये सोचा कि हमें मंदिर जाना है, तुम घर से निकले स्मरण करने के कोई रास्ते में जरूर नहीं कि मुझे मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है, और कहीं नहीं जाना, मुझे मंदिर जाना है, मैं भूल नहीं जाऊँ, ऐसा कोई नहीं करना पड़ता। सहज ही हमारा टर्निंग मंदिर के और का ही रहता है, भले हम दुनिया भर का विचार करें इस
दर्शन फिर भी हम अपने अभी तक पूर्णता की लक्ष्य शुरुआत ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया है।
ध्येय बांधा हो तो चाल परिणाम की ध्येय के अनुसरण करके ही चलती रहेगी, और कहीं भी ध्येय के अनुकूल परिणाम नहीं रहा वहाँ हमारी जागृति रहेगी, हमारी जागृति रहेगी, बिना जागृति कोई काम नहीं करना। जैसे हम चल रहे हैं तो आगे जा रहे हैं, इसमें ऐसा देखा कि सामने से कोई पागल हुआ कुत्ता या पागल हुआ घोड़ा या हाथी आ रहा है, अगर हम हटेंगे नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो पीछे से कोई ऐसे बूंद देते हैं, भाई हट जा हट जा हट जा हट जा, हमारा ध्यान गया, हम दो कदम पीछे हट गया तो निकल गया। दो कदम जब पीछे हटे और आगे जाना, आगे जाते वक्त हम दो कदम पीछे हट गए, हमने क्या क्या एडजस्टमेंट किया, जैसे विचलित हुए क्या, भले ही हम दो कदम पीछे गए जैसे तो विचलित नहीं हुए। तो ऐसे चलते चलते एडजस्टमेंट कहीं भी करना पड़ेगा, लेकिन हमारी जागृति है जैसे विचलित नहीं होते हुए ध्येय पर पहुंचने के लिए ही वो एडजस्ट, पीछे भी हटते हैं तो ध्येय के कारण से, आगे भी जाते हैं तो भी ध्येय के कारण से, अगर हम पीछे नहीं हटते तो हमारा ध्येय तक हम पहुंच नहीं पाते, इतना एक्सीडेंट बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम दो कदम पीछे हटे हैं तो भी हमारा ध्येय को पहुंचने के वास्ते ही उतना हमने एडजस्टमेंट किया।
सोचना या विचार करना बंद होगा, यह मतलब उसको दृष्टि में सोचने को अवॉइड करना, अपने से जुदा करना सोचने की बात को, तो ऐसा मन करे जो शून्य बात में शून्य हो गया, कुछ है ही नहीं, सोचना ही कैसा मन पर
सोचना बंद होगा ही नहीं, ऐसा सोचना का विचार करने का बंद करना है, ऐसा संबंध से कोई विचार बंद नहीं हो सकता है। विचार तो मन वाले प्राणी को चालू रहने वाला है ही। अब क्या है कि जिस उपयोग से वो विचार करता है उसी उपयोग को अपने आप में जब वो प्रत्यक्ष अपना स्वरूप को प्रत्यक्ष तौर से ग्रहण कर लेता है, उतनी जागृति में आता है, तो ये अवस्था बदल गई विचार वाले, बंद करना नहीं है, वह स्वयं बंद हो जाता है।
तो उधर सोचता था, इधर सोचने लगा,
लेकिन इसमें आत्मा ग्रहण नहीं होता था और अनुभव नहीं होता था, वस्तु परोक्ष रह जाती थी, जबकि वस्तु प्रत्यक्ष है, जो स्वयं प्रत्यक्ष है वो परोक्ष रह नहीं सकती है, ऐसा जब पहचान में आया तो फिर ये विचार वाली जो परिस्थिति है उसमें फर्क हो गया, पर्यायन फर्क हो गया, वही उपयोग जो विचार करता था वो तो प्रत्यक्ष तौर से अपने आप को ग्रहण करने लगा। शून्य होने का कोई सवाल ही नहीं,
अपन विचार जिस भूमि से उठते हैं, विचार जहाँ से उठते हैं, जिस भूमि से विचार उठते हैं, वही बात
उस भूमि पर चला गया यहाँ तक पहुँचा,
जहाँ आपको शून्यता नजर आती है वह चेतना भूमि
है।
योग पर से हटा जब स्वयं की ओर लगा, ये थोड़ा अनजान पर विषय
हो, उसके बीच का डिस्टेंस जो था
स्पष्टीकरण में आखिर के
480
यही चल रहा था, ये तो पीछे गए आपके लिए 454 तक गए। ऐसे दृष्टि के विषय भूत स्पष्टीकरण माना थी, ऐसे दृष्टि के विषय भूत स्वस्वरूप का निर्णय होते ही सभी अवस्थाओं के प्रति उपेक्षा सहज ही हो जाती है, कमी नहीं पड़ती है, हो ही जाती है, क्योंकि इसकी वो इतना महान है कि इसकी मुख्यता ही छूट नहीं सकेगी, इसकी मुख्यता बनी रहेगी, बस बाकी के सब गुण हो गया, करना नहीं पड़ा, एक की मुख्यता में और सब गुण हो ही जाता है, निर्णय हुआ मुख्य हो गया, मुख्य हो गया तो बाकी सहज भी अवस्था गुण हो ही जाएगी। निर्णय में तो ये बात है कि जिस स्वरूप का निर्णय हुआ वो अनादि से पूर्ण है और कृतकृत है, तो उसमें तो कुछ करने का अवकाश ही नहीं है, गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। फिर तो ये अवस्था का ज्ञान होगा कि ये अवस्था जगन्य भाव में चल रही है, तो पूर्ण होने वाली है, अपने काल में पूर्ण हो ही जाएगी, मुझे उसकी उपेक्षा रखनी यही बराबर है, अपेक्षा रखने से तो, इसकी अपेक्षा करने से तो मेरा जो स्वरूप निर्णय में आया है उसकी अपेक्षा छूट जाएगी, ये तो छोड़ने लायक है नहीं, और ये स्वतःपूर्ण होने वाली है तो फिर मैं क्यों इसकी उपेक्षा करूं। जब हमारे नीचे वाला आदमी अच्छा काम बराबर कर रहा है तो हम क्यों माथा डाले, उसका माथा डालने से इसका काम बिगड़ता है, क्या करे घर में भी संसार में क्या करते हैं कि जब हम ये जानते हैं कि हमारा लड़का हमारा ऐसा तेज है, तो जो भी कारोबार संभालता है हमसे भी अच्छी तरह संभालने वाला है, हम एक रुपया काम करता है वो सवा रुपया करता है, जब हम काय को उनको डिस्टर्ब करें, हम डिस्टर्ब करते हैं क्या उसको, फिर डिस्टर्ब ही नहीं करते, यही हमारी भलाई का काम है।
जैसे संयोग की इच्छा वाले को इच्छा के इच्छानुसार संयोग का मिलना पुण्य का उदय तो है, लेकिन उसमें मैंने संयोग भोगने में वह पाप की पुष्टि करता है, वैसे ही देव गुरु शास्त्र देव शास्त्र गुरु का मिल जाना जो पुण्य का उदय तो है, लेकिन उनके प्रति भाव में मैंने शुभ भाव में मग्नता मैंने एकत्व बुद्धि होनी ये मिथ्यात्व के पाप की ही पुष्टि है। अब कल वाला प्रश्न उठाओ फिर से उठाओ फिर से
शुभ भाव में तो भी लगता है नाश्ता करने के बाद में सुख बना महसूस हुआ, तो ये तो परंपरा चली आ रही है, वो मस्तिष्क में प्रवेश नहीं हुई बात कि नाश्ता करने के बाद में अपने को दुखी कैसे माना जाए,
दुख कैसे माना जाए, कैसे समझा जाए, समझेंगे वैसा मानेंगे, जैसा समझेंगे वैसा मानेंगे, है ना, तो कैसे समझा जाए।
ये बात सामने प्रत्यक्ष में है, ऐसे ही भगवान की भक्ति आदि में जो अशुभाव महसूस होता है, लेकिन भक्ति आदि के परिणाम में बिल्कुल दुख महसूस नहीं होता, उसको कैसे समझा जाए,
कैसे समझा जाए, मिलान करो इस वक्त, उस वक्त भी ज्ञान सामान्य तो है अपने पास में,
ज्ञान में जैसा भक्ति के शुभ राग में अकुलता है, वैसे अकुलता ज्ञान में तो नहीं, दो अलग अलग जाति के भाव है। ज्ञान जाति में अकुलता नहीं और राग की जाति में अकुलता है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। अगर समझ में नहीं आता है तो कारण तो उतना है, कारण को अगर आपको मैंने उसका निदान देखने का है कि हमको रुचि है, इसलिए जिस अशुभ में भी रुचि होगी उसमें भी दुख नहीं लगेगा, शुभ में रुचि होगी उसमें भी दुख नहीं लगेगा। तो दुख नहीं लगने का कारण मिल गया हमें
रुचि का,
कि जहां तक हमारी शुभ अशुभ भाव में रुचि है वहां तक दुख लगने वाला नहीं है। वहां से एक तो रुचि मंद पड़नी चाहिए, रस अपना मंद होना चाहिए, मंद रस है कहीं भी जाओ उतने आपत्ति। अब है उसमें दुख कैसे समझे, तो अगर मंद रुचि में आए हमारा नुकसान समझ कर गए, कि तीव्र रुचि से तो नुकसान बहुत है, नुकसान समझते ही रुचि मंद हो जाएगी। मंद रुचि के काल में हम ज्ञान को राग से मिलान करें तो कहाँ आकुलता है कहाँ आकुलता नहीं है उसका पता लगेगा।
मुख्य मुख्य वस्तु रुचि है, तो उसमें रुचि होने पर तकलीफ नहीं मालूम पड़ता, अशुभ भाव।
हाँ,
और इसमें शुभ भाव
अशुभ में तो आकुलता तीव्र है ही है कि नहीं, फिर भी क्यों नहीं उसमें सुख होता है,
रुचि
है, रुचि है। तो जहाँ रुचि होगी वहाँ दुख होने पर भी दुख नहीं मालूम पड़ेगा। जैसे 5 साल का बच्चा है, हमने 2 किलो मिठाई बाजार में से ली, अपनी झोले में रखी, तो बोलेगा कि मैं मुझे उठाना है, हम ये कहेंगे कि तुझे वजन लगेगा, तो छोटा है उसको उठा नहीं पाएगा, अरे नहीं नहीं मैं उठाऊंगा, तो छोटा है तो उसको रस है उठाने में, तो उसको दुख नहीं लगेगा, उसका बोझा नहीं लगेगा, भार नहीं लगेगा, इनके लिए तो भारी है भी। तो आगे जा करके 15 मिनट के बाद ये तुम ले लो, क्यों वजन लगता है मेरे, उसको शारीरिक ताकत तो उठाने की नहीं है,